ओम शांति, ओम शांति। तो आज की मुरली सभी को याद होगी, क्या कहा बाबा ने आज? 21 जन्मों की राजाई लेना है तो क्या करो? ज्ञान धन का दान करो। तो कौन दान कर सकेंगे ज्ञान धन का? हाँ, जो खुद, अगर खुद के ही बुद्धि में नहीं है ज्ञान रतन, तुम दूसरों को क्या देंगे? तो पहली बात, ज्ञान रतन हमारी बुद्धि में रहे। किसकी बुद्धि में रहेगा ज्ञान रतन? श्रीमत पर चलने वाले की। लगता है सचमुच बाबा ने ज्ञान रतन आपको भरपूर बड़े ध्यान से मुरली सुना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान रतन दान वही कर सकेंगे जिनकी बुद्धि में ज्ञान रतन होगा। लेकिन बुद्धि में तब ज्ञान रतन होगा जब बुद्धि हमारा स्वच्छ साफ है। अगर हमने बुद्धि को पहले से ही भरपूर करके रखा है, किससे हम भर के रखते हैं? व्यर्थ से। अगर व्यर्थ से भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, तो ज्ञान रतन ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। तो यदि चाहते हैं कि ज्ञान रतन हमारी बुद्धि में ठहरे और हम दूसरों को दान करें, तो क्या चाहिए? बुद्धि की सफाई, बुद्धि स्वच्छ साफ हो, खाली हो व्यर्थ से। हाँ, जिसको बाबा कहते हैं कई बार कि ये ज्ञान रतन बुद्धि, कौन सी कैसी बुद्धि होनी चाहिए? सोने का बर्तन। जब बुद्धि सोने का बर्तन होगा, अर्थात स्वच्छ साफ होगा, तब ज्ञान रतन ठहर सकेगा। कहां से मिलता है ये ज्ञान रतन आपको? रोज की मुरली से। अगर हम रोज मुरली सुनेंगे तभी तो ज्ञान रतन अंदर आएगा। अगर सुनेंगे ही नहीं तो, मुरली सुनने के लिए 5 बातें हैं। अगर आप वो 5 बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं तो ज्ञान रतन ठहर सकेगा और आप दूसरों को सुना सकेंगे। पहली बात है मुरली सुनना, है ना? पहला बात क्या आता है? मुरली सुनना। अब सुनने के लिए, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की एक मुरली में आया था, ये पॉइंट नोट करके रखो। बाबा ने कहा कि सुनना माना क्लास में सुनना। ऐसे नहीं कि हम घर में, हमारे पास मोबाइल आ रहा, मोबाइल में है ना, हम व्हाट्सएप में पढ़ लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, इंटरनेट पे हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते, वो नहीं। बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है क्लास में जाकर। अब बाबा के महावाक आपको बताऊं, बाबा ने कहा, देखिए आप वो महावाक पढ़िए। कई बार बाबा ने, तो उसमें बाबा ने ये कहा कि अगर कोई कारण है, सचमुच कोई कारण है, बहाना नहीं है, तो बाबा भी मना नहीं करता। आपको कोई इमरजेंसी है, कहीं आना है, जाना है, तो बाबा मना नहीं करता। कारण है तो आप अपने साथ मुरली लेकर के जाओ। लेकिन यदि आप घर पर हैं, कोई भी कारण नहीं है, तो आलस अलबेलेपन में आकर के मुरली सुनना कि यहीं पढ़ लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, तो वो रॉन्ग है। तो पहली बात, मुरली सुनना, लेकिन कहां सुनना, कहां सुनना, ये बताइए। क्लास में जाकर के, सेंटर पर जाकर के मुरली सुनना। जैसे जो बाबा ने कहा कारण, तो मुझे याद आया, अब भाई कोरोना का समय था, तो उस समय कारण था, है ना? यहां से भी मैसेज गया, स्थूल गवर्नमेंट ने भी मना किया, भाई आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, यहां से भी मना किया गया, तो उसका वो कारण था, उसमें आपका मिस नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभी वो समय पूरा हो गया है, बाबा ने फिर से हमें सुंदर चांस दिया है, तो अगर इस समय हम अलबेलेपन में आकर के मुरली मिस करते हैं, तो ये फिर बहुत रॉन्ग हो जाता है। तो पहली बात, मुरली सुनना। दूसरा होता है सुनाना, है ना? मुरली सुनना और सुनाना भी है। तो जो ध्यान से मुरली सुनेंगे, वही तो दूसरों को सुना सकेंगे। अगर हम ही नहीं सुने, हमें ही याद नहीं, तो हम दूसरों को क्या सुनाएंगे। तो दूसरी बात है मुरली की पॉइंट दूसरों के साथ भी शेयर करना, दूसरों को सुनाना, और सुना तब सकेंगे। तो तीसरी बात है मुरली समाना, इम्पोर्टेंट कि मुरली के ऊपर समाना कैसे समाएगा, जब उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आज बाबा ने क्या कहा, है ना, विचार सागर मंथन करेंगे। आज भी बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करो। तो तीसरी बात है समाना। चौथी बात है स्वरूप मिलाना, है ना। जब हम मुरली चिंतन मंथन करते हैं, अपने अंदर समाते हैं मंथन करके, तो वो हमारे जीवन से दिखाई पड़ने लगता है। और पांचवी बात है अनुभवी स्वरूप बनना। जब हमारे कर्म में आता है तो उसके हम अनुभवी बनते हैं। तो ये मुरली के पांच स्टेप। इसलिए बाबा ने कहा मुरली धारणा करनी है, और जब हमारे अंदर खुद के अंदर धारणा होगा, प्रैक्टिकल स्वरूप में होगा, है ना, तब हमें बोलना नहीं पड़ेगा। तब आपसे ऑटोमेटिक लोग आएंगे, पूछेंगे आप कहाँ जाते हो, आप इतने खुश रहते हैं, आप क्या करते हो, कौन सा मेडिटेशन करते हो, हमें भी ले चलो। अच्छा, प्रश्न में क्या था, किन बच्चों के ऊपर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, जो श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चलते हैं। तो अभी आप इस पर होमवर्क करना, कम से कम 10 मुख्य मुख्य श्रीमत नोट करना, ठीक है ना। आप ये कार्य करना, अभी अभी नहीं, आप लिख लो मुख्य मुख्य 10 श्रीमत, वो 10 श्रीमत नोट करना, और रात में रोज सोने के पहले एक बार देख लेना, ठीक है, जो मैंने श्रीमत नोट किया था वो श्रीमत प्रमाण ही हमारी दिनचर्या रही। आप देखेंगे आपका योग बहुत अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जो सारे दिन में कुछ ऊपर नीचे होता है ना, वही व्यर्थ संकल्प के रूप में योग में चलता है, या पास्ट की बातें या दिनचर्या की बातें। तो 10 मुख्य मुख्य श्रीमत, जैसे एग्जांपल, हम श्रीमत में क्या क्या मनमत मिक्स कर देते जो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे बाबा कहते मैं अमृत वेला बच्चों को वरदान देने आता हूं, तो माया भी उस समय माया भी आती है, श्रीमत में मनमत मिक्स कराती है, और बड़े ही रायल रूप से। हाँ, क्या मनमत मिक्स कराएगी, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे माया बाबा कहते अमृत बेला उठो, तो माया कहती है अब उसके संकल्प देखो, अगर ये संकल्प आए तो समझो ये माया संकल्प ला रही है। माया क्या संकल्प लाती है, देखा तुमने रात में देर से सोया है ना, अभी इतनी जल्दी क्या है, रोज तो अमृत वेला उठते हो, आज नहीं उठेंगे तो क्या हर्जा हो जाएगा, बैलेंस रखना है ना, शरीर का भी बैलेंस, संगम योगी शरीर है, बहुत वैल्यूएबल शरीर है, इसकी भी संभाल करनी है। तुम ऐसे ही वैसे भी आप कल सारा दिन बिजी थे, रात में देर से सोए, एक घंटा है आराम कर लो, ये सब है ना, बड़े रायल शब्दों में माया लाती है, और उस माया के हम बातों में आ जाते हैं। तो अब ऐसे ये भी कि जो श्रीमत है उस श्रीमत में हम कहीं मनमत तो नहीं मिक्स कर रहे हैं। मुरली में हम क्या क्या मनमत मिक्स करते हैं, बाबा की भोजन की श्रीमत है तो उसमें हम क्या क्या मनमत मिक्स करते हैं, है ना, एक तरफ श्रीमत और दूसरी तरफ उसमें चेक करना कि कहां कहां हमारा मनमत मिक्स होता है। और बाबा ने आज कहा जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, माया की ग्रहचारी उनके ऊपर बैठ नहीं सकती। तो अगर जीवन में कोई समस्याएं आती, कोई परिस्थिति आती, कोई बातें आती, कोई कारण आता, कोई रुकावट आता है, तो हमें अपने अंदर चेक करना है शांत मन से, कहीं मैं श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं। श्रीमत का उल्लंघन ही सारी समस्याओं का कारण है। अगर आप श्रीमत मर्यादा के अनुसार आपकी दिनचर्या है, अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म श्रीमत मर्यादा के अनुसार कर रहे हैं तो आपका योग बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से आत्म संतुष्टता का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा? हाँ, तो पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या कहा बाबा ने? हाँ, क्या? हाँ, उस पर आते हैं, उसके पहले। अरे आप तो वरदान, ठीक है, वरदान में पहुंच गए। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर सदा चलते रहो, यही क्या है बताओ? श्रीमत पर चलते रहना सदा, यही क्या है? माया नहीं आएगी। क्या बोला? हाँ नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक से हाँ बोलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, कल्याण, ठीक है, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलना यही है अपने ऊपर दया करना, अपना कल्याण करना। कितनी अच्छी बात! अगर हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो हम अपने आप का अकल्याण कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि 10 श्रीमत नोट करना, ठीक है ना, और देखना मैं श्रीमत प्रमाण कहां तक चलता हूं। तो अपने ऊपर कल्याण करना माना श्रीमत पर चलना, श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स नहीं करना। फिर आगे बाबा ने क्या कहा? सर्वोदयाबन, सर्व पर दया करने वाले। तो बाबा ने क्या निशानी बताई? वो क्या करेंगे? पतितों को पावन बनाएंगे, पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। तो सबसे पहले है स्वयं को, सर पर दया करना माना पहले तो अपने आप पर दया करना, और अपने आप पर दया करना, अपने आप पर कल्याण करना माना श्रीमत अनुसार अपनी दिनचर्या बनाना। 31-12-70 की अव्यक्त मुरली ये पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार नहीं दो चार बार पढ़िएगा। अमृत वेले आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक हमारी दिनचर्या कैसे श्रीमत प्रमाण हो? आंख खुले तो पहला संकल्प क्या, और फिर इस प्रकार सारे दिन की दिनचर्या बताते हुए रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है। अगर उस अनुसार हमारी दिनचर्या रहेगी तो हम व्यर्थ से ऑटोमेटिक मुक्त रहेंगे, योग हमारा बिल्कुल सहज हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने क्या कहा? अमृत वेले उठकर क्या करना है? रूहानी धंधा कर, कमाई जमा करनी है। क्या रूहानी धंधा करते हैं? बाबा की याद में हम बैठते हैं तो हम अपनी कमाई तो करते ही हैं, लेकिन सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करते हैं। न केवल सारे विश्व, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करते हैं, सबसे बड़ी सेवा करते हैं। योग में बैठना यही सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा ने कहा खास अमृत वेला, लेकिन कई बार हम कहते ना क्या करें, अमृत वेला ही भारी भारी होता। कई बार कहते हम उठ नहीं पाते, कोई कहते हम रात में देर से सोते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण। तो इसकी जो है आप 16-11-95 की अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा। आपकी अगर कोई अमृत वेला नहीं उठ पाते हैं या उठते हैं तो भारीपन का अनुभव होता है, कोई भी समस्या कोई भी कारण है अमृत वेले के संदर्भ में, तो 16-11-95 की अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा। और सार रूप में बाबा ने एक शब्दों में यही कहा कि अमृत वेला अगर पावरफुल बनाना है, सचमुच शक्तियां बाबा से भरना है, प्रभु मिलन करना है, तो रात में सोने के पहले बाबा को सारे दिन का समाचार सुनाकर फिर सोना है। अच्छा, आगे और बाबा ने क्या कहा? विचार सागर मंथन करना है। क्या होगा? विचार सागर मंथन करने से फायदा ही फायदा है ना। जितना हम ज्ञान का मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, उतना है ना विचार सागर मंथन से हम व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त रहेंगे, योग हमारा अच्छा लग जाएगा और ज्ञान खजाना अपना बन जाएगा, फिर ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, वैसे कुछ ना कुछ का बातों का तो मंथन चिंतन चलता ही रहता है, हम व्यर्थ का चिंतन ना करके ज्ञान का मंथन चिंतन करें। और फिर आगे बाबा ने क्या कहा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है ना, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, देह और देही, देही अर्थात आत्मा, मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ, पैरों से चल रही हूँ, मैं आत्मा आत्मा भाई को देख रही हूँ, है ना। जैसे मैं इस शरीर का आधार लिया हूँ कर्म करने के लिए, तो बार बार इस बात की मेहनत, देही अभिमानी बनने की मेहनत। और अगर सचमुच हम सारा दिन देही अभिमानी बनने की मेहनत करते हैं तो हमारा योग बहुत सहज और नेचुरल हो जाता है। वरदान में क्या था, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता वो। आप लोग बहुत ध्यान से मुरली सुना है ना, सब फटाफट उत्तर बताते हैं, अच्छा उत्तर बताने में बहुत होशियार हैं। तो एक बार बाबा ने कहा, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि बाबा आप तो कहते हो मुझे यूज करो, शक्ति को आह्वान करो, लेकिन मैंने आपको, मेरे सामने समस्या आई, परिस्थिति आई, मैंने शक्ति को खूब आह्वान किया, बाबा आपको मैंने खूब बुलाया, लेकिन आप तो आए नहीं, मैं तो माया से हार खा गया। तो बाबा ने आज वरदान में कितनी सुंदर, शक्ति उसी के सामने आती है जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, है ना, जो मालिक बन करके। तो एक बार बाबा ने तीन बातें बताई, अगर बाबा तो मदद दे रहे हैं लेकिन यदि मदद नहीं अनुभव हम कर पाते तो उसके तीन कारण है। पहला, स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते, एक कारण। दूसरा, श्रीमत के आगे जी हजूर, जो आज बाबा ने वरदान में कहा, जो श्रीमत के आगे जी हजूर करेगा शक्तियां भी उसी के आगे जी हजूर करेगी। और तीसरी बात, जो अपने समय को सफल करते हैं शक्ति भी उसी के आगे आती है। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो जैसे कि समय बदला लेती है कि तुमने हमें बर्बाद किया, और जब समय पर तुम्हें शक्ति की बहुत जरूरत होगी तो हम भी आने नहीं देंगे। तो अगर ये तीन बातें हैं, स्वमान की सीट पर सेट रहना, श्रीमत के आगे जी हजूर करना, समय को पूरी तरह से सफल करना, तो हो नहीं सकती कि बाबा की मदद का अनुभव ना हो, कदम कदम पर बाबा की मदद का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, सिंपल बनने वाले ही, सिंपल रहने वाले ही अनेक आत्माओं के सिंपल बन सकते हैं। सिंपल मना कोई दिखावा ना हो, हम दिखावटी ना हो, जो हम वास्तव में रियल में हैं। तो रियल में क्या है, हम उस स्वरूप में स्थित रहें, अपनी रूहानियत में रहें, आत्मिक स्थिति में रहें। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है लोगों के पास, ज्ञान सुन सुन करके लोग थक गए हैं। क्या देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं। तो जितना हम रूहानियत में रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी योग युक्त स्थिति रहती है, बाबा की छत्र छाया की अनुभव होती रहती है। तो रूहानियत में रहेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक हमारे द्वारा सेवा कराता रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रोज की मुरली से जैसे आप रोज मीठे बच्चे धारणासार वरदान स्लोगन नोट करते ही हैं, लेकिन साथ में ये लक्ष्य रहे कि आज बाबा ने जो कहा है कम से कम एक बात व्रत ले लेना है कि ये हमें करना ही है, ठीक है ना। तो मुरली सुनने का मतलब सार्थक होगा, नहीं तो कई बार माताएं बोलती ना कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है। कब माताएं बोलती हैं? जब वो बच्चा करता नहीं है। हमने मुरली सुना और किया नहीं तो हम सोचे, अपने आप से पूछे, क्या मुरली सुना? तो मुरली सुनने का मतलब करना। जिस दिन हमने किया उसी दिन लिखे हाँ आज मुरली सुनी, अगर नहीं किया तो नहीं सुनी, समझो। तो क्या करना है? रोज मुरली सुन करके एक बात व्रत की तरह हाँ धारण करना कि बाबा ने ये कहा है और ये हमें करना है। ओम शांति।